नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भगवतो सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकीम्। श्रीमद्भागवतम् अष्टम स्कंध अष्टम अध्याय श्लोक क्रमांक अष्टम स्कंध सप्तम अध्याय श्लोक क्रमांक 12। छठा अध्याय ना सात अध्याय ना अष्टम स्कंध सप्तम अध्याय श्लोक क्रमांक 12। उपरि अगेन्द्रम गिरिराठ एव अन्न आक्रमम हस्तेन सहस्रबाहु। तष्ठ दिवि ब्रह्म भव इन्द्र मोक्ष अभ्रिष्ट वृद्धि समान अभिष्ट। उपरि अगेन्द्रम गिरिराठ एव अन्न आक्रमण हस्तेन सहस्रबाहु। तष्ठ दिवि ब्रह्म भव इन्द्र मोक्ष अभीष्ट वृद्धि सुमन अभीष्ट। उपरि अगेन्द्रम गिरिराठ एव अन्न आक्रमण हस्तेन सहस्रबाहु। तष्ठ दिवि ब्रह्म भव इन्द्र मोक्ष अभीष्ट वृद्धि सुमन अभीष्ट। पढ़िए पढ़िए। उपरि योगेन्द्रम गिरिराठ एव अन्न आक्रमम हस्तेन सहस्रबाहु। तस्थ दिवि ब्रह्म भव इन्द्र मोक्ष अभीष्ट वृद्धि सुमन अभिवृष्ट। पढ़ेंगे उपरि योगेन्द्रम गिरिराठ एव अन्न आक्रमम हस्तेन सहस्रबाहु। तस्यादिमिन्द्रम इन्द्रमोक्षम् अभिविष्ट वृद्धि समनाभिविष्ट। उपरि अगेन्द्रम गिरिराठ एव अनाक्रमण हस्तेन सहस्रबाहु। तस्थ दिवि ब्रह्म भवेन्द्र मोक्षय अभीष्ट वृद्धि सुमन अभीष्ट। उपरि योगेन्द्रम गिरिराठैव अक्रमन हस्तेन सहस्रबाहु तस्त दिवीन्द्र ब्रह्म अभीष्ट वृद्धि सुमन अभीष्ट शब्दार्थ उपरी चोटी पर अगेन्द्रम विशाल पर्वत गिरिराथ पर्वत का राजा गिर एव सहस्र सदृश अन्य दूसरा आक्रमण पकड़कर हस्तेन एक हाथ को से सहस्र बाहु 1000 हाथों वाला तस्थ स्थित दिवि आकाश में ब्रह्मा जी भव शिव जी इंद्र स्वर्ग का राजा इंद्र मक्षय प्रमुख द्वारा अभिवृष्ट वृद्धि भगवान की स्तुति को सुमन शुभन फूल अभिवृष्ट वर्षा कर श्लोकार्थ तब मंदर पर्वत की चोटी पर भगवान ने अपने आप को हजारों भुजाओं सहित प्रकट किए जो अन्य विशाल पर्वत की तरह लग रहे थे और एक हाथ से मंदर पर्वत को पकड़ के रखा। तब ब्रह्मा शिव इंद्र तथा अन्य देवताओं ने उच्च लोकों में भगवान को स्तुति की और उन पर फूलों की वर्षा की। तपट श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जय श्रील प्रभुपाद की। जब मंदर पर्वत दोनों ओर से खींचा जा रहे थे तो संतुलन बनाए रखने के लिए भगवान इनकी चोटी पर और एक विशाल पर्वत के रूप में प्रकट हुए। तब ब्रह्मा शिव तथा इंद्र ने भी अपना अपना विस्तार किया और भगवान पर फूल बरसने लगा। ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले साङ्गरूपकदमयं ददाति सपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुनवैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवं साद्वैतं सबद्धुतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदं सगन ललिता श्री विधर्खान्वित जयतं सुरोत्पंग मर्म मंदे मर्त्य गति मत सर्वश पदम भुज राधा मदन मोहन दिव्योद वृंदावरण्य कल्पद्रु माधव श्रीमत रत्नगर सिंहासनस्थ श्रीमदशील गोविंद देव पृष्ठालेभ्य शिवमान शरामि श्रीमान रसराश्रम्भि वंशीवट तट स्थित कर्षण बेनेश्व गोपी गोपीनाथ श्रीअस्तिन श्रीचैतन्य प्रसादेन तद्रूपस्य विनिर्णयम् बालोऽपि कृन्ते शस्त्र दृष्टे ब्रज विलासिन मुखं करोति वाचलं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपा तमं वन्दे परमानन्द माधव श्रीगुरु दीनतारिणम् अमं विष्णुपादाय कृष्णपेष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पश्चात् देश तारिणे जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज क्लास का प्रस्तुति नहीं थे लेकिन संयोगवश हमें बुलाया क्लास के लिए। मेरा कुछ तैयारी नहीं क्लास के लिए थोड़ा से टाइम हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे और बहुत जल्दी क्लास हम लोग समाप्त करेंगे। और आज हमारी एक मंदिर का वरिष्ठ पुजारी भक्तों छोरी छोड़ दिया, इसलिए भक्तों लोग आज कम है, सब उनको लेकर देह संस्कार के लिए जा रहा है। प्रभु जी का नाम निम्बार प्रभु बा नंदू प्रभु बोलते हैं। प्रभु जी सेवा करते करते अपना शरीर त्याग किए, कल 8:30 बजे आरती भी किए, बर्थडे पूजा भी किए, फिर 1 बजे शरीर छोड़े। हाँ 1 बजे तो यहाँ पर भगवान अपना को एक ही समय पे विभिन्न कार्यों में सहयोग देने के लिए भगवान अलग अलग अवतार ग्रहण किए और अपना विस्तार किए। एक तो ये जो पर्वत लेके आना और समुद्र मंथन करना व उसमें अमृत प्राप्त करना, ये जो ये दिया मंत्रणा दिया वो भी भगवान ने दिया उन लोगों को। देवता और दानव दोनों एकत्रित होने के लिए नहीं चाह रहे थे, लेकिन ये समुद्र मंथन का जो सलाह वो भी भगवान ने दिया। और फिर भगवान एक ही टाइम पे ये समुद्र मंथन के लिए अलग अलग अवतार भी लिए। अभी पर्वत लेके आने के लिए एक तरफ देवता और एक तरफ दानव, और दोनों तरफ दोनों और खींच रहे थे, और पर्वत इतना भारी थे, इतना विशाल थे, जो देवता दानव के लिए जो असंभव थी लेके आना, उसको उठाना संभव नहीं था। लेकिन भगवान ने देखा जो पर्वत का आवश्यकता है समुद्र मंथन के लिए, तो पर्वत ये लोग उठा नहीं पाएंगे, तो भगवान पर्वत को उठाने के लिए भी पर्वत का नीचे रहे भगवान प्रकट हुए, और ऊपर भी संतुलन को रोक संभालने के लिए पर्वत गिर जाएगी, दोनों तरफ खींच रहा है तो संतुलन बिगड़ जा रहा है, तो भगवान ऊपर भी भगवान बैठ गया और सहस्त्र हाथ भुजाओं लेकर भगवान वहां पर ऐसे बैठा जो आरक पर्वत, पर्वत का ऊपर आरक पर्वत आ गया ऐसे लग रही थी। और इस दृश्य को देखकर देवता लोग और देवताओं में भी मोक्ष मतलब मेन मेन देवता जो है वो ऊपर से पुष्प बारिश कर रहे थे। तो यहां पर देवता भी दोनों रूप में है, इंद्र शिव ब्रह्मा ये तो एक देवता का पक्ष में खेच रहे थे पर्वत, और यहां पर बता रहा है जो आरेक रूप में वो लोग ऊपर से भगवान का ऊपर पुष्प बारिश कर रहे थे। ये जो देवता लोग खेच रहे थे उनका साथ भी तो थे, ये ब्रह्मा शिव इंद्र ये लोग थे, लेकिन भगवान का जब ऐसे अवतार देखा और भगवान ऊपर ऐसे सहस्त्र हाथों में उपस्थित हुए, पर्वत को पकड़ के रखा हुआ, तो भगवान का ऊपर पुष्प बारिश करने के लिए ये इंद्र ब्रह्मा शिव ये लोग आरेक रूपों में ऊपर से पुष्प बारिश कर रहे थे। तो ये जो कथाएं है ये दृष्टांत तो है, ये शास्त्रों का सिद्धांत तो हम लोग भागवतम सुन रहा हूं, इसमें ये हम लोग को समझ में आना चाहिए जो भगवान की कृपा के बिना, भगवान को कृपा नहीं होने से कुछ भी हो नहीं सकते, सब कुछ भगवान की द्वारा होता है। ये तो ये लोग जब समुद्र मंथन कर रहे थे पर्वत को लेके आया तो पर्वत नीचे दब रहे थे, तो भगवान कच्छप अवतार लिया और फिर पर्वत को संभालने के लिए ऊपर भी भगवान बैठ गए थे मंथन का टाइम भी। फिर भगवान का अलग अलग अवतार भी मंथन टाइम, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार, जो बांटने के लिए अमृत बांटने के लिए भी जो है भगवान स्वयं मोहिनी अवतार लेकर अमृत को बांटा। तो जो लोग भगवान को मानते नहीं, भगवान का सत्ता को मानते नहीं, वो लोग असुर है। और जो भगवान को मानते हैं, भगवान का सत्ता को मानते हैं, तो वो देवताएं हैं। ये देवता लोग जो है ये भी जीव का कैटेगरी में आते हैं, लेकिन वो मतलब उनका फैसिलिटी, उनका जो ये शरीर, वो जो है बहुत उन्नत है। ऐसे शिव जी तक भी आधा जीव तत्व आधा विष्णु तत्व, वो जीव तत्व भी माना जाता है और विष्णु तत्व भी माना जाता है। और देवता का तो बात अलग ही है, लेकिन जो भगवान का गुण अवतार में आते हैं शिव जी, वो भी जीव तत्व और विष्णु तत्व का बीज में है। तो फिर भी जीव जो है अहंकार वश अपना को कर्ता मानते हैं, अपना को भोक्ता मानते हैं, अपना को प्रभु मानते हैं, और इसलिए जो है जीव का बंधन के कारण बन जाते हैं। भगवत गीता में बताया जो प्रकृति क्रिया मनानि गुणोय कर्माणि सर्वस्व अहंकारो विमूढात्मा कर्ता ही मिति मन्नते। ये जो क्रिया होता है, जो भी कार्य करते हैं मनुष्य व जीव, भगवान का प्रकृति के द्वारा, भगवान का शक्ति प्रकृति के द्वारा वो होता है, प्रकृति का द्वारा और गुण, प्रकृति का गुण की द्वारा क्रियाशील होता है, क्रिया होता है। अरे प्रकृति भी क्रिया करते हैं कैसे? प्रकृति भी क्रियाशील नहीं होता है, भगवान का इक्षुण से, भगवान जब एक प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं तब प्रकृति क्रियाशील होता है। और प्रकृति का जो तीन गुण सत्व रज तमो, ये प्रकृति का गुण की द्वारा जो है ये क्रिया संपादित होता है। लेकिन जो जीव है वो अपना को कर्ता मानते हैं, मैंने किया, मेरा द्वारा हुआ, लेकिन सब कुछ जो है एक्चुअली जो है ये भगवान की द्वारा ही होता है। जो हमारी जो बुद्धि है, हमारी जो शक्ति है, हमारा जो भी है, ये जो पाचन क्रिया चल रहा है, ये सब कुछ भगवान ने बता रहा है। जो मैं जठराग्नि रूप में भी मैं स्थित हूं, मैं अन्न को पचाता हूं, तो अन्न का पचाने का क्षमता भी जीव का नहीं है, भगवान पचाते हैं, तो जीव क्या कर सकते। चैतन्य चरितमृत में कविराज गोस्वामी ने कहा, जो भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलते। सब भगवान का इच्छा से जो है सब कुछ क्रियाशील होता है। और ये जो बड़े बड़े देवता लोग, चंद्र सूर्य, ये जो प्रकृतियां, ये सब क्रियाशील, इतना बड़ा बड़ा काम कर रहा है, ये भगवान का शक्ति से कर रहा है, भगवान ने उनको शक्ति प्रदान की जिसके लिए वो ये कर सकते। ऐसे तो ये जो भगवान का भक्ति करना, भगवान को समझना और भगवान को समझने के लिए कोशिश करना, वो भी भगवान का शक्ति से होता है, भगवान का इच्छा से होता है। नहीं तो दुर्योधन नहीं को समझ रहे थे भगवान, भगवान विश्वरूप भी देखाया दुर्योधन को, जब बांधने के लिए जा रही थी, लेकिन कहां समझ पाया? समझ पाया? तो उनको पूछा गया, जो जो स्वयं भगवान आपको समझा रहा है तो फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसका कारण क्या है? तो दुर्योधन बता रहे थे, जो मैं जानता हूं जो धर्म क्या है अधर्म क्या है, धर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं और अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं। कृष्ण जो बता रहा है हमारी, वो जो अच्छा उपदेश दे रहा है वो भी मैं समझ रहा हूं, लेकिन हमारे अंदर ऐसे एक शक्ति क्रिया कर रहा है जो मुझे वो बुराई में रुचि है लेकिन अच्छा में हमारी रुचि नहीं है। मुझे समझ में आ रहा है जो एक गलत है लेकिन फिर भी हमें उसमें रुचि है, क्योंकि हमें अंदर से एक शक्ति ऐसे हमें प्रेरित कर रहा है जो यही ठीक है तुम्हारे लिए, यही करना चाहिए। भगवान बाहर से तो ऐसे समझा रहे थे लेकिन अंदर से उसको समझने नहीं दे रहे थे। माया अपहरित ज्ञान आसुरिक भाव मास्थित, जो माया द्वारा अपहरित ज्ञान आसुरिक भाव संपूर्ण, तो भगवान उनका सामने अपने आप को प्रकटित नहीं करते। तो ये दुर्योधन जो है ये आसुरिक भाव संपूर्ण होने का कारण उनका सामने प्रकटित नहीं होता। जब जीव अपना आपको कर्ता मानते हैं, मैं ही करता हूं, तो क्या करते हैं, अपना परिवार का दास बन जाते हैं, अपना सोसाइटी का दास बन जाते हैं। कर्ता बनना है तो उनको वो प्रोपद जी तो ऐसे भी बताया, जो जो भगवान को सेवा नहीं करते हैं तो कुत्ता का सेवा करते हैं। तो जो कर्ता अपना अपना को मानते हैं तो उनका दुर्गति ऐसे है, कुत्ता का सेवक बन जाते हैं, और जो अपना आपको भोक्ता मानते हैं तो वो बीवी का दास बन जाते हैं, स्त्रियों का दास बन जाते हैं। बता रहा है जो कृष्ण अपना आपको माया अपना भोग करना चाहते हैं, निकटस्थ माया तारे झपटिए दे रहे कृष्ण क्या श्लोक, ये जीव भोग वांछा करे, भोग की आकांक्षा करते हैं, जो जीव जो कृष्ण को भूलकर भोग की आकांक्षा करते हैं निकटस्थ माया, मतलब स्त्री का दास बन जाते हैं। भोग करना है तो भोग करो लेकिन भगवान को भूल जाते हैं। और जो मालिक बनना चाहते हैं, भोक्ता बनना चाहते हैं, प्रभु बनना चाहते हैं, तो मालिक बनना चाहते हैं तो उसको क्या होता है, मरने के बाद वो तेजारी में कॉकरोच बन जाते हैं। कुत्ता गेट का कुत्ता बन जाता है, बकरी बन जाता है, बन के आकर वो दाना खाने लगता है तो अपना बच्चा लोग ही मार के भगाते हैं। उसका आसक्ति रहता है जो ये सब चीज मैंने सब रुक्षक सब एकत्रित करके रखा और ये दिखने वाला कोई नहीं, इसका सामल निका हमारी अधिकार है, तो उसी घर पे जो है ना कुछ जीव जानवर बन के आ जाता है वो चीज को संभालने के लिए, उनका आसक्ति रहते हैं और फिर अपना ही बेटा लोग का मार खाते हैं। तो जो लोग भगवान को मानते हैं व भगवान का भक्त है, चाहे उसका कोई भी कुल में जन्म हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कोई भी कुल में उनका जन्म हो, कोई भी आश्रम में हो, कोई भी जाति में हो, वो विचार नहीं है। जैसे प्रहलाद महाराज असुर कुल में जन्म लिया लेकिन भगवान का महान भक्त, लेकिन उनको असुर नहीं कहा जाएगा, प्रहलाद महाराज को असुर कहा जाएगा, भक्त प्रहलाद, दैवी गुण, देवता का गुण। जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा तुम दैवी गुण संपूर्ण हो, तो भगवान का जो भक्त होता है वो देवता का कैटेगरी में, वो दैवी गुण संपूर्ण है, और जो अभक्त है उसका अंदर कितना भी गुण रहे वो अवगुण है, वो असुर है, वो माया अपहृत ज्ञान, वो आसुरी भाव माश्रिता, मूढ़ा नराधम, भगवान ने कहा वो मूढ़ा है, वो नराधम है, वो चार कैटेगरी में है, मूढ़ा है, वो नराधम है, वो माया द्वारा अपहृत ज्ञान है, और वो आसुरी भाव माश्रिता है, जो भगवान को नहीं मानती वो असुर है। और इसलिए भगवत भक्तस्य सुमहान गुणात्, जो भगवान का भक्त होते हैं उनका अंदर महान गुण होता है, उनका अवगुण भी गुण है। जैसे रामायण में आप देखते हैं बाली और सुग्रीव का कहानी में, तो भगवान रामचंद्र बाली को मारने के लिए सुग्रीव का साथ संधि किए थे, तो बाली क्या किए थे, जो उनका छोटे भाई का पत्नी को जो है लेकर रख दिए थे और उनको राज्य से उनको भगा दिए थे, वो राज्य का भागीदार से उनको बहिष्कार मतलब ये कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। लेकिन जब बाली का वध हुआ और भगवान रामचंद्र उनको सहायता के लिए उनको संधि किए थे, और वो राज्य मिलकर मिल गया, जब ऐश्वर्य मिल गया, तो भगवान का वो संधि भूल गया जो सीता उद्धार के लिए उनको हेल्प करना है, वो फिर वो बाली का स्त्री को और अपना स्त्री को भी वो भी रख दिया। लेकिन बाली को जब वध किया तो भगवान ने उनको पॉइंट बताया, जो तुमने ये सब गलती किया इसलिए तुमको मैंने मारा, तुम अपना भाई का पत्नी को रख दिया। लेकिन सुग्रीव फिर अपना बड़ा भाई का पत्नी को रख दिया, लेकिन जब भगवान का शरण में आया लेकिन भगवान उनका दोष जो है नहीं देखा, वो यही देखा जो मेरा शरण में आ गया मेरा भक्त है। तो भगवान का भक्तों का कोई अगर दोष भी रहे लेकिन वो भी जब अनन्य भक्ति करते हैं, भगवान का शरण में आते हैं, तो उनका दोष भी दोष नहीं माना जाता है, भगवान दोष नहीं मानते, वो शरण में आए इतना ही मानते, तो उनका जो भी कर्म है जो भी पाप है सबसे वो मुक्त कर देते भगवान। लेकिन उनको याद दिलाया जो तुमको संधि किया था मैंने सीता उद्धार के लिए, तो तुम अभी भूल गया हो राज्य मिलकर जब राज्य पाकर, तो फिर सहायता के लिए सहयोग किए। तो भगवान का भक्तों में कभी कभी कुछ अवगुण भी कुछ होता है, तो उनको नहीं देखना चाहिए। विशेष करके जो पूर्वकृत दुष्कर्म, जैसे जगाई महादाय थे, उनका ऐसे कुछ भी पाप नहीं था जो वो लोग नहीं किए थे, लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने कहा नाम लो और जो भी किया कोई बात नहीं, लेकिन अभी से नहीं, अभी हरि नाम करो। तो इसलिए वैष्णव जाति बुद्धि, वैष्णव जाति बुद्धि करना, वैष्णव का पूर्व गलती देखना, जो अभी साधु बन गया, वो जब कॉलेज में पढ़ते थे तो उनका जो ये कहानी मुझे मालूम है, वो क्या करते थे, अभी बहुत बड़ा भक्ति दिखा रहा है, तो जो पूर्वोकित जो कर्म है उसको हमें बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। अपना जन्म का बारे में, हमारा ये घर पे जन्म हुआ था, इस स्कूल में जन्म हुआ था, मैं ब्राह्मण था, मैं बड़ा घर का बड़ा जाति का हूँ, मुझे ये सब कुछ मालूम है, तो ये सब अहंकार नहीं रखना चाहिए। जो अच्छा कुल में जन्म, सूरत शरीर है, अच्छा स्त्री और ऐश्वर्य, ये सब जो है भक्ति का बाधक है। इसका अहंकार रखने से जो है हम भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते। विशेष करके वैष्णव का पूर्व विचार नहीं रखना चाहिए, और जो ब्रह्मचारी सन्यासी है उनको घर से आसक्ति नहीं रखना चाहिए। घर से आसक्ति रखेगा तो ज्यादा दिन तक मंदिर में नहीं टिकेगा, धीरे 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 घर पे ही चले जाना पड़ेगा फिर। और घर पे आसक्ति रखोगे, घर से कांटेक्ट रखोगे, तो फिर आज ये हो गया, कल हो गया, आज उससे झगड़ा हो गया, उससे संपत्ति लेकर लफड़ा चल रहा है, माँ बीमार पड़ गया, ये आपको बार बार घर की ओर खींचेगा। साधु बनना है तो साधु बनो, और फिर संसार में रहना है तो संसार में रहकर भक्ति करो, नहीं तो घर का आधा और इधर का आधा तो फिर धीरे 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 घर पे लेकर चले जाएगा। फिर घर पे कोई माँ पिता को देखने के लिए कोई है नहीं, तो फिर संसार भी करना पड़ेगा, तो जैसे था वैसे ही हो जाएगी। आप आए थे जो आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए, भक्ति में प्रगति करने के लिए, भक्त बनने के लिए, लेकिन अब जहां पर था फिर वहां पर ही वैसे ही स्थिति हो जाएगा। ना तो मंगल आरती होगा, ना तो गुरु पूजा होगा, ना तो भागवतम क्लास होगा। नहीं, हम भी तो भक्त हैं, हम भक्ति करते हैं, हम भक्ति करते हैं तो मंगल आरती कहाँ होता है उनका? मंगल आरती आता है कि गृहस्थ भक्त लोग, सब लोग आते हैं हर दिन? नहीं आते। लेकिन ये सब रूल्स रेगुलेशन प्रभुपाद जी ने बनाया भक्त बनने के लिए और भक्ति में प्रगति करने के लिए, और इसका द्वारा ही हमारी भक्ति में प्रगति होगा। जो प्रभुपाद मंदिर का प्रोग्राम है, प्रभुपाद जी का रूल्स रेगुलेशन है, उसको फॉलो करने से। तो भगवान को मानना, बहुत लोग बोलते हैं हम भगवान को मानते हैं, प्रणाम कर लेते हैं, लेकिन उधर शिव जी भी रखा हुआ, गणपति भी रखा हुआ, लेकिन एक बात है कि भगवान को भक्ति करना चाहिए, भगवान कृष्ण का भी भक्ति करना चाहिए, एक बात है। हाँ, भगवान कृष्ण का भक्ति करना चाहिए, लेकिन एक बात है जो भगवान कृष्ण का ही भक्ति करना चाहिए, एकमात्र कृष्ण का ही भक्ति करना चाहिए। ये भी ये भक्ति है अनन्य भक्ति, एकमात्र कृष्ण का ही भक्ति करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण, यहाँ पर रखता हूँ, किसी का कोई प्रश्न? प्रश्न है?
भगवान राम जी ने सुग्रीव को बाली को मारा, और लेकिन फिर देखते हैं कि उन्होंने माफ नहीं किया, ऐसा ऐसा बताया है उसने, कोई भक्ति बता रहे थे, कोई महाराज बता रहे थे
कि
उनको माफ नहीं किया पूरी तरह से, कि कोई कुछ गलत काम भी करता है तो भगवान देखते।
सुग्रीव को माफ नहीं किया?
नहीं, उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, लक्ष्मण से उन्होंने बोला कि उन्होंने ऐसा गलत काम किया और उनकी वजह से मैंने उनका वध किया, अभी उनके भाई स्वयं ये गलत काम कर रहे हैं, तो इनका भी वही हाल हो सकता है। तो लक्ष्मण जी ने तुरंत ऐसा अस्त्र उठाए थे और मारने के लिए जा रहे थे, तो भगवान राम ने उनको
नहीं, भगवान रुका दिया ना,
भगवान रुका दिया,
भगवान मारने नहीं दिया।
ऐसा था कि
मतलब लक्ष्मण जी गुस्सा किया था, भगवान राम ने गुस्सा नहीं किया। एक बार शरण में आ गया जो है, तो जैसे कोई उपयुक्त गुरु है और कोई शिष्य उनका शरण में आते हैं, तो मतलब दीक्षा लेने के बाद भी बाय चांस कुछ गलती अगर कर देते हैं तो गुरु उनको बहिष्कार नहीं करते, उनको माफ कर देते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे एक कहानी हो श्री चैतन्य महाप्रभु का, काला कृष्ण दास। तो काला कृष्ण दास श्री चैतन्य महाप्रभु का भक्त ही नहीं थे, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का बहुत घनिष्ठ भक्त थे और श्री चैतन्य महाप्रभु का असिस्टेंट थे, वो असिस्टेंट कर रहे थे। लेकिन वो भट्टोथारी का चक्कर में और स्त्री का प्रलोभन में वो भट्टोथारी का पार्टी में मिल गए थे, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु थोड़ी ना उनको त्याग दिए, उसको उसको खींच के लेके आया, उसको बाल पकड़ के। और भट्टोथारी लोगों को बोले मैं भी सन्यासी हूं, तुम लोग भी सन्यासी हो, तुम्हारा ये क्या धर्म है, अपना सेवक को तुम ले लेते हो। मेरा सेवक है काला कृष्ण दास और तुम सन्यासी होकर सन्यासी का ऊपर ऐसे तुम मतलब अविचार करते हो, सन्यासी का सेवक को तुम ले लेते हो तुम लोग। तो भट्टोथारी लोग उनको मारने के लिए तैयार हो गया, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु को जब मारने के लिए गया तो अपना अपना अस्त्र में अपना अपना ही मर गया वो लोग। और काला कृष्ण दास को क्या किया, बाल पकड़ के लेके आया। कभी कभी ऐसे धमकाते हैं थोड़ा से, ये करते हैं, बोलते जाओ तुम मेरे सामने से, तुम इधर से जाओ, ये मंदिर से जाओ, भागो। लेकिन अच्छा से विचार किया जाए तो वो भक्तों को गुरुदेव रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, जो भक्तों का कैसे भलाई होगा इसके लिए वो मन में सोचने लगते हैं। वो तो फिर भगाते नहीं, बोलते ठीक है ये मंदिर में सेवा मत करो, वो मंदिर में जाओ जाके सेवा करो। इसे गलती नहीं करना चाहिए, लेकिन मनुष्य जीवन में तो ज्यादातर गलती ऐसे नहीं करना चाहिए। वो तो बंदर थे, उतना उसका बंदरामी स्वभाव वो छोड़ दो, सुग्रीव बंदर थे उसका बंदरामी स्वभाव छोड़ दो। लेकिन मनुष्य जीवन में तो जब दीक्षा लेते हैं, गुरु का आश्रय में आते हैं, भक्ति में आते हैं, तो हमें साधु सावधान मतलब साधु को सावधानता से चलना चाहिए, ऐसे गलती नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी शास्त्र में ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, जो एक बार शरण में भगवान का आया तो भगवान ने उनको, ये जब विभीषण ने शरण में आया तो बोला रावण आपका विरोधी है, रावण भी शरण में आ जाए तो आप क्या करोगे? तो बोले मैं अयोध्या राज्य उसको दे दूंगा। जैसे शिशुपाल भगवान को गाली दे रहे थे, तो एक तरफ तो आप देखना उसको मार दिया नहीं, उनका साजुज्य मुक्ति प्रदान किया भगवान ने। भगवान ने थोड़ी ना उसका गलत उसको कुछ ये पशुजनी में ढाल दिया, नरक में ढाल दिया क्या? नहीं, उनको साजुज्य मुक्ति प्रदान किया। भगवान का किसी भी प्रकार से भगवान का नाम लिया, भगवान का शरण में आ गया, भगवान का किसी प्रकार माने भगवान का सेवा किया, भक्ति किया, गाली देकर भी भगवान का नाम लेते थे नहीं, इसलिए उनका साजुज्य मुक्ति हो गया। जैसे देखिए ये आया था पुतना आए थे स्तन में कालकूट विष लेकर आए थे भगवान को मारने के लिए, उनको भी मातृगति प्राप्त कराया भगवान ने। भगवान अपना शरण में आते हैं वो देखते हैं, उनका दोष जो है वो नहीं देखते, ठीक है। हरे कृष्ण। वो मारने के लिए गया था लक्ष्मण ऐसे करते हमेशा ऐसे किया, भरत को भी मारने के लिए जा रहे थे तो, लेकिन भगवान राम ने नहीं किया। हरे कृष्ण।